ओम शांति। मुझे मैंने कहा कौन से टॉपिक पर क्लास करनी है, कहते जो सा टॉपिक आपको अच्छा लगे, तो अच्छी बात है। ये तो आप सब कहानियां सुनना तो पसंद करते होंगे, है ना? तो पहली कहानी मैं सुना रहा हूं, क्योंकि कुछ कुछ थोड़े थोड़े ऊंग रहे हैं, टाइम ही ऐसा है। मुझे भी आपको देखकर थोड़ी ऊंग आ गई थी, तो इसलिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं जिसका संबंध हम सब की रोज की लाइफ से भी है, जो बाबा ने मुरली चलाई है उससे भी है। बाबा ने क्या बताया है कि दो चीजें, एक्चुअली तो तीन हैं, मैं दो ही लूंगा जो इस कहानी से संबंधित हैं। दो चीजें हमको हमने त्याग दी हैं। कौन कौन सी बोलो? हैं? आलस्य और अलबेलापन। ठीक है, तो आपको पता है कि रावण पांच विकारों का प्रतीक है, फिर भी रावण के साथ उसका एक और भाई भी दिखाते हैं, उसका क्या नाम है? कुंभकर्ण, है ना? खास दिखाने की क्या जरूरत थी, जब उसमें ही पांचों समाये हुए हैं तो कुंभकर्ण क्यों दिखाया गया, प्रश्न पैदा होता है। तो कुंभकर्ण किस चीज की निशानी है? आलस और अलबेलेपन की, है ना? ये आलस इसलिए कि वो उसको सोना ही अच्छा लगता था। अच्छा, उसने समझा सोने की लंका का मतलब है नींद लेने की लंका। अच्छा, सोने का अर्थ उसने गोल्ड नहीं समझा, सोना समझा। अलबेलापन क्यों? कि उसको कहा गया कि अरे भाई विनाश आ रहा है, देखो लंका जलने वाली है, वो फिर भी सो जाता था। उसको कुछ अपने अंदर था कि जब आखिर में लंका को आग लग जाएगी मैं भाग जाऊंगा, कुछ होगा था ना अंदर ख्याल, इसको कहते हैं अलबेलापन। सावधानी के बाद भी अलबेले रहना। अच्छा, अब आप जानते हैं कि कुंभकर्ण का क्या असर हुआ, आखिर कुंभकर्ण को क्या हुआ? कुंभकर्ण क्या हुआ? मारा गया। कुंभकर्ण मारा गया। बाबा ने हम सबको कहा है कि रावण के साथ कुंभकर्ण को भी मार डालो। कुंभकर्ण मारा गया तो उसकी जो पत्नी थी, युगल, स्त्री, वाइफ, उसका क्या हुआ? उसका नाम क्या था पहले तो आपको बताना पड़ेगा। कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था पता है? शास्त्रों में है? अच्छा, हम आपको बता देते हैं। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निंद्रा देवी। कुदरती ऐसे से शादी की होगी उसने। अच्छा, अब निंद्रा देवी विधवा हो गई। तो आपको पता है कि विधवा जो होती है उसको क्लब में, पार्टी में, नाइट क्लब में, डांस करने में, शादी ब्याह में जाना मना होता है कि तेरे तू तो अफसोस में है तो तू इन चीजों में नहीं जा सकती। इसलिए उसको ऊपर बैन लग गया कि निंद्रा देवी खबरदार, अब तू विधवा है, अब तू ना किसी शादी में जाएगी, ना किसी पार्टी में जाएगी, ना डांस करने की किसी में जाएगी, बिल्कुल तू विधवा के रूप में रह। एक साल बीत गया, अब बेचारी उदास हो गई, उसका तो चेहरा ही लटक गया, कैद हो गई जैसे कि। फिर उन्होंने पंचायत बैठाई कि इसके ऊपर कुछ रहम करो, कहीं तो जाने दो इस बेचारी को। तो पंचायत ने सोचा कि बात तो ठीक है लेकिन क्या किया जाए, तो उन्होंने फैसला किया इसको एक जगह जाना अलाउ कर दो, वह सत्संग, क्योंकि विधवा सत्संग में जाती हैं, जहां परमात्मा का नाम लिया जा रहा हो, जहां सत्संग हो, वहां जाना उसको अलाउड है। इसलिए प्रायः जो निंद्रा देवी है वो ऐसी ऐसी सभाओं, तो नहीं कहते क्लास में आ जाती है, इसलिए आप ध्यान रखना कि भाई उसके प्रभाव में नहीं आना। ठीक है, यह कथा नंबर एक। तो बाबा कहते हैं आलस और अलबेलापन किसको आता है, आपको पता है किसको आता है? लो, एक बहन तो अभी उबासी लेके दिखा रहे कि मुझे आता है, ऐसे तो ना करो। उबासी ऐसी चीज है कोई साइंस वाला नहीं बता सका कि एक को आवासी आए दूसरे को क्यों आ जाती है। टेलीफोन पर आप आवासी ले तो उधर सुनने वाले को भी आ जाती है, ऐसी खतरनाक चीज है। अभी साइंस इस पर रिसर्च कर रही है, लेकिन ये निंद्रा की निशानी है। एक बार ब्रह्मा बाबा बहुत साल पहले पटना में जब सेंटर खुला तो एक बहुत बड़े सेठ के घर खुला। उस नगरी का सबसे अमीर सेठ था, उसका नाम था जलान बाबू, और दादी प्रकाशमणि जी वहां टीचर थी। कई बहनें गई वहां, क्योंकि बहुत बड़ा सेठ था तो उसने सोचा कि भाई मैं यहाँ सेवा अच्छी कराऊंगा। तो उसका जो महल या बंगला था वो नदी के अंदर खुलता था पीछे से, तो नदी भी उसको लगती थी, उसके पास कश्ती वगैरह भी थी। तो आखिर एक बार बाबा वहां गए तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम रात को योग लगाएंगे। तो पहले वक्त में जो योग लगता था, तो यहाँ तो एक बहन ने चोटी से पता नहीं हवाई जहाज खींचा है, तो वहां सबकी चोटी को के ऊपर सिर के ऊपर धागा बांध दिया जाता था और उसको बाबा से कनेक्ट कर देते थे कि भाई योग उसका लगा रहे, उसको पता रहे। तो बहुत शानदार गोल्डन धागा लगा के योग में बिठाने लग का प्लान था। तो रात को भोजन के बाद उसको ये प्रोग्राम होना था। तो बाबा आ गए कश्ती में और भाई बहन आ गए, तो जलान बाबू भी आ गया। तो अचानक जलान बाबू ने उबासी ले ली, तो बाबा ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे को नींद आ रही है, चलो चलो चलो। तो बाबा इस बात का आप देखेंगे, कभी भी किसी बात में आपको इंटरेस्ट ना हो, कोई सुनाया जा रहा है, मैंने तो अभी शुरू ही किया है, लेकिन वो सुनाया जा रहा है, आपका ध्यान और तरफ है, रेलवे बुकिंग करानी है, भोजन लेना है, बस में बैठना है, तो आपको ये जो सुनाया जा रहा है इससे आपको वासी आ जाएगी। जब कोई मतलब की बात हो तो किसी को वासी नहीं आती। इसलिए वासी निंद्रा देवी कैसे आएगी, वो आपके अंदर प्रवेश करके वासी ले आएगी, तो सावधान रहिए। तो बाबा कहते हैं कि ये जो आलस्य है इसका मुख्य कारण क्या है, पहला है आलस, दूसरा है अलबेलापन। इसका कारण है हारना। जो व्यक्ति की कमाई नहीं हो रही होती है, बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेस नहीं हो रहा, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारे बिजनेस कैसा चल रहा है, रोज कितने कस्टमर आते हैं। कहता मैं दिन नहीं महीने गिनता हूँ, महीने में भी कोई आ जाए तो खुशकिस्मती है। तो उसको वासी आएगी। जो कमाई कर रहा होगा, बाबा कहता उसको दुकान बंद भी कर रहा होगा, कोई कस्टमर आ जाए कहेगा, वो कहेगा कल आ जाऊं दुकान बंद, नहीं 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 तो ठहरो, दुकान फिर खोल लेगा। अगर बिजनेसमैन भोजन कर रहा है, दुकान के पीछे कस्टमर आ जाए कहेगा आप खाना खा लो फिर आओ, नहीं 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 लाओ, क्योंकि कमाई एक ऐसी चीज है। तो आलस्य आने का मतलब क्या हुआ, ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, क्या है बोलो, ओम शांति तो जोर से बोलते हैं, क्या है, दो चार ने कहा सफलता, बाकी ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता। और सफलता की ब्राह्मणों का अर्थ परिभाषा दूसरा है। दुनिया के लोग समझते हैं सफलता मैंने फायदा, प्राप्ति, सम्मान, कुछ मिल जाए, गेन, प्रॉफिट सफलता है। और असफलता मैंने कुछ खो जाए, नुकसान हो जाए, का निरादर हो जाए, असफलता है। लेकिन बाबा की परिभाषा क्या है बताओ, बाबा की सफलता की क्या परिभाषा है, हाँ? हाँ? जागरूक रहना तो इम्पोर्टेंट है कि आपकी जेब ना कट जाए, लेकिन जेब में पहले कुछ होना चाहिए ना। सफलता कैसे होती है, हाँ? योग में ये तो तरीके बता रहे हैं मेहनत के। सफलता मैंने उस्तत निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान सब में समान रहना, इसको कहते हैं सफलता। अगर उस्तत में खुश हो गए, निंदा हुई तो उदास हो गए, हानि में और रोने लग गए मेरी घड़ी गुम हो गई, और लाभ में किसी की घड़ी प्राप्त हो गई तो खुश हो जाए, तो सफलता नहीं है। इसलिए जो ब्राह्मण उदास होते हैं, भाई कोई पानी वानी पिला दो, जूस ना सही, कुछ प्यास लग रही है, अच्छा, तो जो ब्राह्मण ये कभी भी इसको सफलता मानते हैं और असफलता बार बार होती है तो वो निराश हो जाते हैं। तो निराश होने के साथ आलस आता है। मान लो एक दौड़ लग रही है, या रेस हो रही है, या कोई तेज चल रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, कोई यात्रा निकल रही है, अचानक आपकी बूट या चपली में कुछ हो जाता है, बूट खुल जाता है, उसमें कोई कंकर घुस जाता है, चपली कुछ गड़बड़ कर देती है, पांव ऊपर आ जाता है, आप रुक जाते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि बाकी सब आगे निकल गए और हम थोड़ा पीछे रह गए, तो आप भाग के कोशिश करते हैं, चाहे सांस फूल जाए, अपनी लाइन में चले। अगर बार बार ऐसा होता रहे, 5-6 बार हो जाए और आपका सांस भी फूल जाए और आप पीछे भी रह जाए, फिर आप क्या करेंगे, यात्रा तो आगे निकल गई, आप कहेंगे चलो अब घर चलते हैं, ठीक है ना। हुआ इसी प्रकार से जो आत्मा रोज का रोज, हमारा ज्ञान का टाइम टेबल लंबा नहीं है, कोई 1 साल का बनाए, कोई 5 साल का बनाए, कर लेंगे ना, आज का, आज के दिन में अगर आपने अमृत वेला ठीक किया है, अगर आपने मुरली ठीक तरह सुनी है, सुबह से ध्यान में है, धारणा में है, तो आपको सफलता ही मिलेगी। कोई आपको कुछ कह जाएगा, आपको महसूस नहीं होगा। अगर आपने कोई चीज मिस कर दी इसमें से, मान लो अमृत वेला मिस किया हुआ है, आप उठे तो लोग अमृत वेला करके आ रहे थे, या आपने क्लास मिस की हुई है, मुरली नहीं पढ़ी है ना सुनी है, तो आपके अंदर अंदर ही अंदर छोटी सी एक घुटन होगी। मान लो आपकी चपली उलझ गई है, तो आप क्या करेंगे, अंदर उसके ईर्ष्या पैदा होगी, पता भी नहीं लग के मेरे अंदर आज कुछ मिस हो गया थोड़ा सा, अच्छा। फिर आप किसी को भी मिलेंगे, कोई ज्ञान की बात करेगा, अंदर आपके है जिसको कहते जल्लाहट, जिलाए हुए हैं आप, तो आप उसकी बात को ना अच्छी तरह नहीं सुनेंगे, ठीक है, क्यों कि मिस किया है। अगर 5-4 दिन ऐसा कर दो तो फिर क्या होगा, फिर रोज ही होता है, अलबेलापन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस जो हानि हुई, जो नुकसान हुआ, जहां फेल हुए, उसको भी अटेंशन नहीं दिया, 5-6 बार फेल हो गए तो ढीले हो जाते। इसलिए आलस और अलबेलेपन को अवॉइड करने का और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका यह है कि साथ साथ रहें, आगे आगे रहें, लंबा प्लान ना बनाएं, कोई भी धारणा को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप मर्यादा के अंदर रहेंगे, सीता मर्यादा के अंदर थी तो जेल में नहीं गई, चाहे किसी भी ढंग से बाहर आ गई, चाहे साधु देखकर आ गई, तरस करके आ गई, आई और वो कितना उसको लंबा जेल काटना पड़ा। इसलिए आलस और अलबेलेपन का ये कारण है। दूसरी बात, आज बाबा ने पीरू वजीर बताया, वो कौन है, पीरू वजीर कौन है, गुस्सा, क्रोध। क्रोध के कई रूप होते हैं, सबसे खतरनाक होता है ठंडा क्रोध। कभी आपने ठंडा क्रोध सुना है, फ्रिज में लगा हुआ क्रोध, बिल्कुल ठंडा, अच्छा, वो सबसे खतरनाक होता है। उसका क्रोध करने वाले को भी पता नहीं होता, देखने वाले को तो क्या होता है। उस क्रोध के कारण वैर, विरोध, ईर्ष्या, नफरत, इस तरह की चीजें अंदर ही रहती हैं। तो जिस आत्मा के साथ होता है, अगर वो सामने से गुजर जाए तो हंसता हंसता व्यक्ति चुप हो जाता है, अच्छी तरह खाने खाने वाले का भोजन रुक जाता है, पता नहीं क्या हो गया, तो ये जो क्रोध है इसका कारण भी आलस्य है। आप हैरान होंगे मैंने क्रोध की बात क्यों छेड़ी। कल दादी जानकी ने थोड़ा सा बताया था कि क्रोध का कारण आलस्य है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्रोध का कारण आलस कैसे है? कैसे है? जब कोई व्यक्ति अपने आप सब कुछ नहीं करता, अपने को ढीला समझता है कि मेरे पास कोई असिस्टेंट है, चलो पानी पीना है, उठकर ना पिया उसको कहा भाई ले आओ पानी पिला दो, ये कर दो, मेरी चादर ठीक कर दो, जो भी है किसी चीज पे डिपेंड करने लग जाता है तो आलसी हो जाता है। और एक संस्कार में आलसी हुआ तो सब संस्कार में आलसी होता है। ये ना समझें कि मैं छोटे छोटे कामों में आलसी हूं इसलिए आलसी हूं कि बाकी कामों में मैं एक्टिव होगा ना। अगर आलस का संस्कार है तो रहेगा। अब क्रोध का आलस से क्या संबंध है? कई कहते हैं सच्ची भी बात है कि मुझे क्रोध वैसे नहीं आता, कोई दिला दे तो आता है। हाँ, मुरली में भी था कि कहते हैं वो क्रोध छोड़ देगा मेरा आप ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा के क्रोध छोड़ने पर अपना क्रोध छोड़ना आधारित करते हो, श्रीमत पर क्यों नहीं आधारित करते? कि बाबा कहता है ना क्रोध नहीं करना, ठीक है। तो होता क्या है जब कोई क्रोध वाली बात करता है हमें क्रोध दिलाने वाली, तो जैसे सूखी लकड़ी या फूस या कागज तैयार है, बस किसी ने माचिस लगाई तो भड़क गया, पेट्रोल तैयार है किसी ने माचिस लगाई तो आग फटाफट लग गई। अगर वही आग आप समुन्द्र में लगाने की कोशिश करें तो क्या होगा? किसी हरे पेड़ को लगाने की कोशिश करें तो क्या होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से पहले तो अंदर तैयारी है कि कोई भी हमें क्रोध दिला सकता है। तो बाबा कहता है प्यार के सागर के बच्चे बहुत सारा पानी अपने पास रखो, आपकी आग भड़केगी नहीं। लेकिन आलस कहां से आ गया? वो इसलिए आता है कि मान लो किसी ने आपको कुछ कहा, आमतौर पे बाबा ने भी बताया सच्ची बात कही, ये नहीं कि कुछ गलत कहा, सच्ची ही बात कही ऐसी जो कि गलत वाले पर भी आ जाता है आजकल तो, लेकिन कही जो क्रोध जलाने वाली है बिल्कुल। अब प्रश्न ये है किसी ने आपको कहा, आपने सुना, उसके बाद आपने उसका असर आना ना। अब जैसे किसी ने जोर से गेंद फेंका और आपने उसको पकड़ना है गेंद को, तो आप क्या करते हो? आप उस गेंद को पकड़ने के लिए हाथ में पकड़कर हाथ को पीछे करते हो, नहीं तो ऐसे रखोगे खिसक जाएगा। दीवार गेंद को कैच नहीं कर सकती, हाथ कर सकता है। कभी आपने चलती ट्रेन से उतरना हो तो भी कहते हैं आगे की तरफ मुंह करके उतरो, पीछे उतरोगे तो डबल धक्का लगेगा, सीधा उतरोगे तो गिर जाओगे। तो कहने का भाव ये है क्रोध का आना, किसी का दिलवाना और आपका उसका उत्तर देना, उसके बीच में थोड़ा सा मार्जिन होता है, जरा सा। अच्छा, अगर आपने उस मार्जिन को यूज किया कि भाई इसने तो ऐसे कर दिया अब मुझे क्या करना है, जमादार तो जमादार का ही काम करेगा, शूद्र तो शूद्र का ही काम करेगा, क्रोधी तो क्रोधी का ही काम करेगा, उसका क्या कसूर? लेकिन आपने किसी ने आप पर कीचड़ फेंक दिया, ठीक है, आपके ऊपर बिच्छू फेंक दिया, अब आप क्या करेंगे? तो वो जो मार्जिन है कि मुझे क्या करना चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल, एक स्वाभिमानी, कोई इज्जतदार व्यक्ति किसी भी चीज को कैसे रिएक्ट करता है। जैसे बीमारी आती है, अब बीमारी में कई तो बहुत हाय बीमारी आ गई अब क्या होगा, फिर आगे का सोचने लग जाते हैं कि मर गया फिर क्या होगा, मेरा क्या होगा, बड़ी लंबी चौड़ी वेस्ट थॉट। बाबा ने दादी के लिए भी कहा कोई वेस्ट थॉट ना करो, ब्राह्मण का काम है ब्रेक पक्की रखना। अच्छा, बजाय दादी का बीमारी देखकर अपनी फिक्र करें हम कि देखो हमें भी ये हो सकता, अपनी फिक्र करो तुम, उसकी बजाय दादी की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि अपनी फिक्र करना जरा मुश्किल है इसलिए बाबा कहता है अपने को चेंज करना है। तो जब क्रोध आए अगर आपने बिना सोचे समझे तुरंत उसका रिएक्शन कर दिया तो क्यों किया कि आपने आलस किया, उस बात को सोचने के लिए मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए, मेरे लिए क्या है देना। जब सिकंदर ने पोरस को कैद कर लिया उसने सोचा तो बादशाह को कैद कर लिया, बोला तुम्हारे साथ क्या सलूक करें, तो बादशाह ने क्या जवाब किया, इंडियन बादशाह था कैद में था फिर भी उसने कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। उसने सिकंदर को याद दिलाया कि मैं बादशाह हूं, भले तुम्हारी कैद में हूं तुम्हें बादशाह के साथ बादशाह जैसे ही सलूक करना है। इसी प्रकार से हम राजा हैं, इंद्रियों के राजा हैं, हमें सतयुग में बाबा राजा ही देने वाला है, हमारा स्वमान है, इतना ज्ञान का अमृत हमारे पास भरा हुआ है जो दूसरे को भी हम पिलाते हैं, और कोई आके जरा सी तीली लगाए हमारे कलश में कोई पेट्रोल थोड़ी है जो भड़क जाएगा, इसलिए हम आलस करते हैं थोड़ा सा, इस वजह से क्रोध को आने रिएक्शन में आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं रिएक्शन में नहीं आना चाहिए, इसने किया इसलिए ऐसे हो गया, कोई सारी दुनिया ही आपसे उल्टा उल्टा करेगी तो आप उसका जवाब ऐसे देंगे, इसलिए इसका तल्लक भी उसके साथ है। अब आइए आगे, आपको आपने सुना होगा कि सीता को कौन चोरी करके ले गया था, रावण। कभी आपने ये सुना है कि पार्वती को भी एक बारी रावण चोरी करके ले गया था, नहीं सुना? हमारा तो आपको कहानी सुनाने का ही प्रोग्राम है आज, तो इसलिए अब आप सुनिए कि पार्वती को रावण चोरी करके ले गया फिर क्या हुआ, क्योंकि इसमें नींद नहीं आएगी आपको दोपहर का टाइम है। कहते हैं कि आपको जैसे कहानी है कि शंकर जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, शंकर जी सोशलिस्ट हैं, विष्णु जी कैपिटलिस्ट हैं। विष्णु की आप देखेंगे मूर्ति सजा सजाया, हीरे ज्वारा ताज तखत, शंकर जी पक्के सोशलिस्ट, केवल एक छोटी सी वो बांध के बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस तपस्या में मगन है, मस्त फकीर हैं। अच्छा, तो पार्वती जी, शंकर जी ने अपनी वो बनाई हुई है तपस्या की कॉटेज, उसमें बैठे रहते हैं मस्त। तो पार्वती जी का रेजिडेंशियल ब्लॉक है उधर, भोजन बनाना जैसे होता है घर में तो इस तरह से है। तो पार्वती जी सोच रही हैं कि क्या है, इतने साल हो गए, इतने इतने हमारी इन्होंने तपस्या कर ली, कुछ उसकी सिद्धि तो हुई नहीं, क्यों नहीं हम ऊपर से बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं, मौसम ऐसा है, तो क्यों नहीं हम एक छोटा सा एक मकान बना लें, जैसे कई लोग कहते हैं है विनाश का टाइम, चलो एक भोपाल में एक लैंड मिल रही है तो बिल्डिंग ही बना ले थोड़ी सी, क्या हर्ज है। अच्छा, तो पार्वती के मन में ख्याल आया कि मकान बना लें, तो शंकर जी के आगे से गुजरी, तो शंकर जी तो तपस्वी हैं, उनको लगा कि पार्वती कुछ गड़बड़ करने वाली है, तो उन्होंने कहा पार्वती जो तुम्हारे मन में उसको छोड़ दो, हम तपस्वी लोग हैं, क्या है लेना दे, जैसे है वैसे ही ठीक है, किसी उलझन में ना फंस जाना। अब पार्वती जी सुन तो लिया लेकिन उसके मन में नहीं आया भाई उलझन में फंस जाना, क्या फंसूंगी मैं। तो पार्वती जी ने कहा नहीं, ये ऐसे ही कर रहे हैं, सुख हो जाएगा थोड़ा सा, हाँ भोजन भी ठीक तरह बनेगा, कपड़े भी ठीक तरह सूखेंगे। अच्छा, तो उसने कुबेर, कुबेर कहते हैं वो जिसके पास बहुत धन था, राजा कुबेर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसने कुबेर को टेलीफोन किया यानी वायरलेस किया कि एक छोटा सा सोने का महल बना दो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसने एक फर्स्ट क्लास सोने का महल अच्छा पार्वती जी के क्वार्टर की जगह बना दिया। अच्छा, शंकर जी के पास गई, इसका उद्घाटन करना है, हा? तो आप आइए, वो मुस्कुराए तो बोले कि उद्घाटन के लिए तो पंडित को बुलाना पड़ता है, रसम है, पंडित आएगा, हाउस वार्मिंग होगी, तो सोचा सबसे बड़ा पंडित कौन है, तो देखा रावण है, प्रकांड पंडित, इतने वेद शास्त्र पढ़ा हुआ। तो उसने कहा चलो रावण को ही बुला लेते हैं। शंकर जी और मुस्कुराए, कहा बुला लो। अब बुला लिया। अब वो सारा हवन वगैरह जो करते हैं कर्म कांड किया। तो उसके बाद शंकर जी, रावण जो था देखता रहा कि पार्वती बहुत सुंदर स्त्री है, इसको तो लंका में आना चाहिए, यहाँ क्या कर रही है पहाड़ के ऊपर। तो उसने मन में ऐसा धार लिया। तो जब पूरा हुआ तो दक्षिणा देनी पड़ती है। तो शंकर जी ने कहा बोलो रावण महाराज, आपको क्या दक्षिणा दी जाए। तो रावण ने कहा जो मैं मांगूंगा वो आप दे देंगे। उसने कहा हाँ हाँ, जब आप हैं ही पंडित, आपको मैं कह रहा हूँ, आप मांगो, जो मांगने दे दूंगा। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है मुझे पार्वती दे दो। अच्छा, अब शंकर जी मुस्कुराए, बोले जाओ पार्वती अब है तुम। अच्छा जाओ, इनके साथ जाओ। अच्छा, अब क्या हो, लोभ आ गया उसको पार्वती को, अब उस फंस गई। सीता तो बेचारी धोखे से फंसी थी, इसने लोभ करके अपने आप को फंसा लिया। अच्छा, अब क्या हुआ, रावण ने पार्वती को रथ पे आया था, हवा से उड़ता हुआ रथ लंका से कैलाश पर्वत पर, पार्वती को पीछे बैठा लिया और चल पड़ा उड़ता हुआ आकाश के मार्ग से, जैसे हम हवाई जहाज से जाते हैं। पार्वती को बड़ी फिक्र, ये क्या हो गया, फंस गई मैं तो। तो उसने फिर जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, उसने विष्णु का ध्यान किया कि महाराज बचाओ मैं तो मरी। अच्छा, तो विष्णु जी एक साधारण किसान का रूप रख के जब वो रथ धरती के पास आने लगा तो वहां खड़े हो गए खेत में, और रावण को ऐसे ऐसे किया। तो रावण ने रथ नीचा किया तो उन्होंने बहुत तारीफ की, महाबली रावण, विद्वान रावण, लंकेश्वर, जो भी किया। तो रावण खुश हो गया, कहता मेरी बात तो सुन लो। ने कहा भाई हाँ रावण, रथ रोको। उसने रोक लिया तो बोला रावण, महाबली रावण, आपने ये पीछे किस नौकरानी को, दासी को बिठा रखा है, हैं? रावण बोला कोई दासी थोड़ी है, ये तो पार्वती है। कहते है, क्या रावण आप क्या कह रहे हैं, ये तो दासी है, इसके कपड़े कितने खराब है, देखो इससे स्मेल आ रही है, पार्वती से तो खुशबू आती है। तो उसने युक्ति करके पार्वती को रावण की दृष्टि में फेर डाल दिया। तो कहा रावण, कहता नहीं नहीं मैं पार्वती है। उसने कहा सोचो, शंकर जी इतने मूर्ख हैं, भोले हैं, जो तेरे को पार्वती दे देंगे। तो उसके मन में डाउट आ गया, सच कुछ को गड़बड़ा। अच्छा है ना, फिर उसने पीछे की तरफ देखा, कहा देखो तो सही। देखा तो उसकी आंखों में फेर था, उसको दासी दिखी, पुराने कपड़े वाली। कहते जरा इसको सूंघ के तो देखो। तो उसके दिमाग में फेर था, उसने कहा नहीं। कहता राजन इसको उतार के फेंको, तुम्हारे लिए शोभा देता। उसने उसको धक्का दिया और चला गया। इस तरह से पार्वती बच गई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आत्मा, किसी भी शास्त्रों में कहानियों का अर्थ यही होता है, किसी भी लोभ में आ जाए, अपने तपस्या को छोड़ दे, सुख सोचने लग जाए, जिसको बाबा कहता है साधना की जगह साधनों में आ जाए, तो उसका क्या हाल होता है, ये बाबा ने बताया। अच्छा, अब देखिए, हम आत्माओं को क्या चाहिए, तो ज्यादातर लोग कहते हैं शांति चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या चाहिए, कहते हैं सुख चाहिए। तीसरी चीज क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, ऐसे ही कहते हैं ना, शक्ति चाहिए। अच्छा चलो, चार से आगे नहीं बढ़ते, टाइम थोड़ा है। शांति का उल्टा क्या है, है उल्टा? अच्छा, सुख का उल्टा क्या है, दुख। प्रेम का उल्टा क्या है, घृणा, ठीक है। शक्ति का उल्टा क्या है, कमजोरी है। अब देखिए कि आत्मा जो है, हम आत्मा, उसकी नेचर क्या है, क्योंकि बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर में आओ, मेहनत मुहनत करने की जरूरत नहीं है। हर चीज की दुनिया में नेचुरल नेचर होती है, चाहे उसमें जान हो या बेजान हो। जब हम कहते हैं आग, तो आग की नेचुरल नेचर क्या है? जलाना, गर्म होती है। आप आग के पास हाथ ले जाएंगे, हाथ जलेगा। बर्फ, बर्फ की नेचुरल नेचर क्या है? ठंडा करना। आप बर्फ की एक टुकड़ा हाथ पर रख लो, वो पिघलते 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 पिघल जाएगा, अपनी ठंड नहीं छोड़ेगा, ठंडी चीज है। पानी बन जाएगा तो भी कोशिश करेगा, जब तक मैं हूं बर्फ का पानी ठंडा रहूं। अच्छा, गुलाब का फूल असली खुशबू वाला, उसकी नेचुरल नेचर क्या है? सुगंध देना। अब गुलाब के फूल को आप मंदिर में रख दो, किसी का हार बना दो, बुके में लगा दो, चाहे कूड़े के ढेर पर फेंक दो, गुलाब का फूल अपनी खुशबू छोड़ेगा कि मुझे कूड़े पर फेंक दिया, मैं अपनी खुशबू क्यों वेस्ट करूं, वापस ले लूं? नहीं। या बर्फ कहेगी मुझे तुमने आग के आगे रख दिया? नहीं। हर चीज अपनी नेचुरल नेचर को कायम रखती है। अब प्रश्न ये है, आत्मा की नेचुरल नेचर क्या है? आत्मा की नेचुरल नेचर क्या है? आत्मा को कहा जाता है सत, चित और आनंद स्वरूप। सत मैंने जो सदा रहे, चित मैंने जो चैतन्य है जिसको अनुभूति होती है, और आनंद स्वरूप उसकी नेचुरल नेचर है। अब आनंद का उल्टा बताओ। आपने शांति का बताया, सुख का बताया, प्रेम का बताया, शक्ति का बताया, आनंद का उल्टा बताओ। है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है ये अति इंद्रिय चीज है, अगर शरीर ना भी रहे तो आत्मा की नेचुरल नेचर आनंद स्वरूप है। तो हम जितनी चीजें शरीर के द्वारा ढूंढते हैं, सुख भाई मौसम अच्छा हो, गद्दा हो, है ना, इसको सुख कहते हैं ना, लेकिन बाबा कहता है कि तुम अपने नेचुरल नेचर में टिको। इंद्रियों से परे का जो चीज है वो आपकी नेचुरल नेचर है। जब आपकी इंद्रियां भी ना रहें, आप बिल्कुल इंद्रियों को अलग भी कर दें, इंद्रियों से मुक्त भी हो जाएं, तब उस नेचर में आप रहें, विदेही रहें, कर्मातीत रहें, तो वो है आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप के लिए आपको किसी भी साधन की, पार्वती के महल की, किसी रूह अफ़ज़ा शरबत की, गोल्डन चश्मे की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें ओरिजिनल स्टेट में रहने के लिए, आत्मस्वरूप में रहने से आपको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। बाकी चीजों की कर लो, लेकिन किसी दिन वो इंद्रिय नहीं रही तो अनुभूति भी नहीं रही, तो सुख के बदले में दुख फील करोगे, शांति के बदले में अशांति फील करोगे, प्रेम के बदले में ऐसा फील करोगे। इसलिए हमें अपने नेचुरल नेचर में रहना। अब ये बताओ, अंधेरा और रोशनी इकट्ठे रह सकते हैं एक ही जगह पर? कि अंधेरा भी है, रोशनी भी है, एक ही जगह पर दिन रात इकट्ठे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अब प्रश्न ये है कि प्रेम और घृणा एक ही स्थान पर इकट्ठे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी घृणा है, सारी दुनिया से प्रेम है लेकिन अपनी जुगल से घृणा है, अगले कल फिर मेरे मत्थे लगोगे, बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ? या अपने पड़ोसी से घृणा है, या शांतिवन में जिसको साथ आपको बेड मिला है उससे घृणा है, वो खांसता ही रहता है, देर से निकलता नहाकर। अगर आपके अंदर किसी भी कारण को छोड़ दो अगर घृणा है, तो प्रेम होगा? पूरा प्रेम, आत्मा प्रेम स्वरूप कहला सकती है? नहीं कहला सकती। इसी तरह से अगर हमारे अंदर किसी भी कारण से अशांति हो जाती है, कारण कुछ भी हो, सबको खीर मिली मेरे वक्त खीर ही नहीं मिली, अशांति हो सकती। कलयुग में तो ऐसा ही होता है ना, कहते हैं एक युगल था उसका एक बच्चा था, कलयुग ही युगल, माता ने खीर बनाई एक दिन फर्स्ट क्लास किशमिश कुशमिश डाल के, तो जब वो परोसने लगी तो गलती से बच्चे की थाली में ज्यादा आ गई, पति की थाली में कम। अब उसको गुस्सा, कहता है पति तेरा मैं हूं या ये है। बच्चा भी तेज था कलयुगी, कहता ये मेरी माँ है या तेरी माँ है। और युगल कहती मेरा बच्चा बेटा ये है या तू है। अच्छा अब झगड़ा हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी भी चीज में ऐसा सोचा, एक चीज का थोड़ा हिस्सा भी है, एक पूरा ड्रम अमृत का उसमें एक बूंद जहर डाल दो, अब वो अमृत कहलाएगा नहीं। और एक ड्रम अमृत अमृत में जहर डाल दो या जहर में अमृत डाल दो, बनना जहर ही है, अमृत नहीं बन सकता, ठीक है ना। खरबूजे के ऊपर चाकू रख दो या नीचे, खटना तो खरबूजा नहीं है। इसी प्रकार से हम जब ये सोचते हैं, कल मोहिनी बहन बता रही थी, हम बहुत खुश हो रहे थे, कहती है दादी वो पवित्र आत्मा है जिसके मन में किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं है। ये है स्टेज। अगर हमारे अंदर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव भरेगा, तभी हम किसी को पॉजिटिव दे सकते हैं। अगर हम कहें बहुत सारों के लिए तो पॉजिटिव ही है, एक आध के लिए नेगेटिव है, पर है तो सही। इसलिए हमें परफेक्शन के लिए एक ही तरीका है, जिसको बाबा कहता है किसी के अवगुण ना देखो। हम भगवान को कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण, क्या कहते हैं सबको याद है ना, प्रभु जी मेरे अवगुण कितना धरो। भगत थे तो कहते थे। अब भगत पहले बात प्रभु जी को डायरेक्शन दे रहा है आपको क्या करना और क्या नहीं करना, है ना। प्रभु जी को पता नहीं है कि चित्त पे क्या धरना है क्या नहीं धरना। प्रभु जी का चित्त बहुत खाली है जो लोगों के अवगुण इकट्ठे कट करके रह धरेंगे। फिर भी बेचारा कह रहा है प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। प्रभु जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारे अवगुण चित्त नहीं धरेंगे, एक शर्त है, सिंपल सी शर्त है, आप बताइए प्रभु जी कि मैं आप भी किसी के अवगुण चित्त नहीं धरना। प्रभु जी कहते हैं मेरे तेरे अवगुण चित्त नहीं धरूंगा यदि आप किसी के अवगुण चित्त नहीं धरोगे। ये भगत को मंजूर नहीं है, कहता कि मैं तो सबके चित्त धरूंगा पर कृपया आप मेरे अवगुण चित्त न धरो। ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना, इस तरह के भगत हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि अगर हमने अपनी दृष्टि अपनी वृत्ति अपने मन को गंदा कर लिया, ऐसा कोई समझदार होगा जो सुबह एक बाल्टी लेकर घर से निकले और छह घर पड़ोस के इधर और छह घर इधर जाके बेल बजाए कि आपका जितना कूड़ा है कृपया मेरी बाल्टी में डाल दीजिए। वो कहेंगे भी ये क्या माजरा है, तो कह जी मैंने ये सारा अपने ड्राइंग रूम में सजाना है, मकान नंबर एक का कूड़ा ये है दूसरे का ये है, तो हंसेंगे नहीं आप। इसी प्रकार से हम दूसरे के अवगुण हमें क्या मतलब, इसलिए अगर हमने गुण के लिए जगह ही खाली नहीं की, जैसे यहाँ लोग ट्रेन में चढ़ते हैं घुसने की कोशिश करते हैं सवारी को उतरने ही नहीं देते, वो कहता है भाई उतरने दो तो जगह बनेगी, नहीं वो गेट पे ही खड़े हो जाते हैं मैंने अंदर जाना है। तो हम भी क्या करते हैं, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, 15 साल हो गए ज्ञान में, क्या करते हैं रोज मुरली सुनते हैं। बाबा कहता है सहनशीलता धारण करो, अमंगोसा धारण करो, प्रेम धारण करो, तो जो से आते बाबा कहता है ना धारण करो, चलो अंदर चलो है, उसके प्रेम को कहते चल अंदर क्यों नहीं जाता। अच्छा सहनशीलता चल अंदर मेरे, जोर से जोर लगाते हैं। अच्छा फिर बाबा का आता है बच्चे रोब को बाहर निकालो, नफरत को बाहर निकालो, आलस को निकालो, कहते चल बाहर क्यों नहीं जाता निकल। अच्छा और वो बेचारे गेट पर खड़े हो जाते हैं। वो अंदर घुसना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है, ना वो आ सकता है ना जा सकता है। फिर हैरान होते हैं कि भाई ये क्या हुआ, हम इतनी में कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है। इसलिए पहले दशहरा आता है फिर दिवाली आती है कि पहले भाई जगह तो खाली करो, किसी ने जंगल में भी पौधे लगाने हो तो जंगल को काटेगा। तो हम दोनों को एक पसंद करते हैं, इसलिए एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी प्रकार से अपोजिट चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। अब दोनों चीजें चाहिए लेकिन आपको उसका रूप बदल के अलग अलग खाने में जमा करना पड़ेगा। आराम का मतलब क्या है हमारे लिए, अगर हम अपनी मर्यादाओं का पालन करेंगे तो आप नेचुरली थकेंगे नहीं, आपको खुशी उमंग रहेगा। अगर एक मर्यादा भी तोड़ दी, डॉक्टर कह दे कि आपने सुबह ये गोली खानी है खाली पेट, रात को 12 बजे खानी है, उठ करके खाएंगे, और बाबा कह दे तो इग्नोर कर देंगे। तो बाबा कहता है करते जाओ, अब मेरे पास तो बहुत बड़ी बहुत पोस्ट है, बहुत पद है, सतयुग से त्रेता के अंत तक मेरे पास पद हैं, दास दासियां भी वहां चाहिए, वहां को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से तो मांगेगा नहीं, चार नौकर भेज दो, यहीं से बन जाएंगे अपने आप। इसलिए बाबा कहता है जब जाओगे तो आपके पास पास होगा, तो आप ही देखोगे कौन सी क्लास का पास है, आगे बढ़ते जाओगे। जैसे रेलवे में होता है कोई एसी में जाए टिकट थर्ड क्लास का हो तो कहेगा आगे जाओ, आप ही सोचेगा एसी है भाई मैंने नहीं जाना। इसलिए बाबा हमें कहता अपने लिए तैयारी करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, बड़े मस्त हैं, बाबा तू ऑलमाइटी है सर्वशक्तिवान है, जैसे वो स्कूल में नहीं बच्चा था पढ़ा पुढ़ा कुछ नहीं, मास्टर जी आपके पास तो कलम है, आपकी मर्जी जितने मर्जी नंबर दे दो, क्यों नहीं आप नंबर दे देते मुझे, है कलम ही चलानी है ना आपने, तो बाबा हम तो पड़े हैं, अब आप सर्वशक्तिवान हो, हमें उठा लो, हमें शक्ति भर दो, इस परीक्षा से पार करा दो। तो बाबा कहता नियम ये है कि मास्टर पढ़ाएगा आपको, दोबारा पढ़ाएगा, 6 बार पढ़ाएगा, नए तरीके बताएगा, पर मास्टर आपके लिए इम्तिहान दे के आ जाए, ये तो कभी नहीं सुना है ना परीक्षा में, मास्टर आपको एनकरेज करेगा। बाबा हर बच्चे को एनकरेज करता है। कहते हैं एक पिताजी अपने बच्चे को हिसाब सिखा रहे थे, तो बोले बच्चा 80 और 40 कितना होता है जमा करके, तो बच्चा बोला 150। तो पिताजी बड़े खुश हुए, शाबाश बच्चा तू हमारा नाम रोशन करेगा, बहुत अच्छा बहुत, लाओ इसको चॉकलेट दो। अपनी पत्नी को कहा रे देखो 80 और 40 150, शाबाश शाबाश। अच्छा अब कोई सुन रहा था, उसने कहा भाई ये क्या करते हो, तुमको भी हिसाब आता है कि नहीं, उसको कह रहा 80 और 40 150 और तुम उसको थपकी लगाए जा रहा हो, वो थपकी लगाने लायक है? वो बोला तुमको क्या पता, तुम तो एक काल देख रहे हो, हैं त्रिकालदर्शी तो हो नहीं तुम। कल जब मैंने इसे पूछा था 80 और 40 तो इसने 190 बताया था, आज इसने प्रोग्रेस किया है इसलिए मैं इसको थपकी लगा रहा हूं, ठीक बात है? अच्छा इसी तरह से बाबा हमारी प्रोग्रेस को देखता है, ये नहीं देखता हम गलत उत्तर दे रहे हैं या ठीक दे रहे हैं, वो हमारा भविष्य देखता है। ऐसे करते 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 बच्चे मेरे नजदीक हो जाएंगे। लेकिन फिर कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने कहा जाता है कि दुनिया बदल जाए हम नहीं बदलेंगे। अच्छा कहते हैं एक बच्चा था, उसको उसका बाप जोर जोर से सड़क पर पीट रहा था, पीट रहा था, पीट रहा था। किसी को बड़ा तरस आया, इतना जोर से मार रहा है, कहते भाई इसको क्यों मार रहा है गरीब को? बोला कल इसका रिजल्ट आने वाला है। अच्छा और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, है ना? उसको पता था ये नालायक क्या लाएगा। इसी प्रकार से ऐसा ना हो कि इस तरह के भी कई बच्चे होते हैं, सुनी को अनसुनी कर दिया, ठीक है ठीक है। अब बाबा हमसे क्या चाहता है, तो उसके लिए भी कहते हैं कि एक बच्चा 100 में से 97 मार्क्स लेके आया, अब बनिया का बच्चा था, बनिए लोग अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते हैं, पैसा कमाना तो जानते हैं, पढ़े लिखे हो जाए हमारी संतान उनकी बड़ी इच्छा रहती। तो 97 मार्क्स लेके आया तो माँ ने पूछा, बच्चा क्या रिजल्ट रहा? कहता 97। कहते शाबाश शाबाश, हलवा बनाया। उसी वक्त देसी घी खाते हैं बनिया लोग, हलवा बनाना शुरू कर दिया, इलायची डाला ये वो। तो अभी हलवा तैयार हो ही रहा था तो दुकान बंद करके वो भी घर में आ गए पति देव। तो उन्होंने दूर से सूंघा, हलवे की खुशबू तो पड़ोस में चली जाती है देसी घी की। बोला क्या बात है भगवान, आज क्या खुशी की बात है जो हलवा बन रहा है। बोली आओ आओ आओ, देखो हमारा बरकुरदार लायक 97 नंबर लाया 100 से। कहता 97 बुलाओ उसको, दो चांटे मारे इधर दो इधर मारे, नालायक 97। माँ बड़ी हैरान, बच्चा बड़ा हैरान। कहता अरे मूर्ख, हम रोज 100 के 300 बनाते हैं और तू मूल भी गवाया। तो ये भी होता है। तो बाबा क्या चाहता है, हमने जी ये कर लिया, एक रस अवस्था रखी, लेकिन एक रस भी लो लेवल पे एक रस रखी या ऊंची एक, हमारी एक रस अवस्था है, हम सदा ही ठंडे ठाकुर हैं। तो ये कोई एक रस थोड़ी हुई। इसलिए बाबा कहता है मैं आपसे कितना एक्सपेक्ट करता हूं। अच्छा अब लास्ट कहानी सुना के मैं पूरा करता हूं, वो भी एक बच्चे की है। अच्छा बच्चा स्कूल से आया, रिजल्ट निकला था तो माता पिता ने पूछा कैसा रहा? कहता बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उन्होंने सोचा भाई शायद स्कॉलरशिप लिया है, कुछ फर्स्ट ग्रेड आया है। बताओ बच्चा कैसा रहा? मैंने बोला ना बहुत ही अच्छा। और उनको उत्सुकता हुई भाई बता दे। तीसरी बार फिर पूछा कुछ बता तो सही कैसा क्या रिजल्ट रहा? बोला बड़ी खुशी की बात है बड़ी खुशी की बात है, इस साल आपको नई किताबें नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा अब आप देखिए, अब हम हंस रहे हैं। अब जरा सोचो, द्वापर से लेकर हम वही गीता पढ़ रहे हैं कोई चेंज नहीं, वही रामायण पढ़ रहे हैं कोई चेंज नहीं, वही महाभारत पढ़ रहे हैं कोई चेंज नहीं। एक एक साल नहीं, जन्म भाई जन्म भाई जन्म भाई जन्म। तो भगवान पूछता है बच्चे कुछ हुआ? कहते हैं आपको नई किताबें नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा तो हमारी किताब ही नहीं बदलती, प्रोग्रेस ही नहीं होती, ये हमारा भक्ति मार्ग है। और बाबा की मुरली देखो रोज नई, जैसे हिमालय में नई स्नो रोज बर्फ पड़ती है, बाबा की मुरली रोज नई। अगर आपने कहीं 5-4 साल बाद दोबारा पढ़ भी ली तो नई की नई लगेगी। ऐसा नहीं है कि वही किताब बार 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 रिपीट करें। अब भगवान जब आए उन्होंने रोका, आज की गीता में भी लिखा हुआ है मेरी प्राप्ति वेद से अध्ययन से नहीं होती, हम वही काम कर रहे हैं। अर्थात भगत लोग भगवान में भावना तो रखते हैं लेकिन उसकी श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं। कई बीके भी हैं, वो कहते हैं चलो वो शास्त्र ही पढ़ लो, अपने भाषण में भी शास्त्र सुनाएंगे कुछ ऐसा वैसा, तो लोग समझे बड़ा विद्वान है। तो विद्वान तो रावण भी था, कहते हैं सारे वेद शास्त्र पढ़ा था फिर भी रावण का रावण ही था। तो ऐसा कहते हैं सारी रामायण पढ़ ली, ये पता ही नहीं लगा राम कौन था रावण कौन था। हमें फखर होना चाहिए कि हमारा बाबा जो कि त्रिकालदर्शी है, जो हमारे हमारे और विश्व के भविष्य को जानता है, उस बाबा के हम बच्चे बने हैं, उसके हाथ में समर्पण होना ही बेड़ा पार है। ठीक है तो पूरे समर्पण हो जाओ, अपनी बुद्धि को किनारे कर दो, बाबा की श्रीमत को अपनी बुद्धि से टेस्ट मत करो। कई कर क्या करते हैं, बाबा की श्रीमत और अपनी बुद्धि जो हमें कलयुग तक ले आई उसे टेस्ट करते हैं। जब बाबा कहता है बच्चे कौन रोकता है, घूमो फिरो मौज करो मन मना, हाँ खुशी की बात है ना घूमना फिरना, हाँ ठीक है। अच्छा अरे रिश्तेदारों को खुश करो उनके साथ, हाँ हाँ ठीक है। तो बाबा कहता अपनी मर्जी की बात हाँ, और जो बाबा की दूसरी श्री माता वो ना, ऐसे नहीं करना। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय भाई साहब का हम सभी तालियां बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जिन्होंने अपनी तेजस्वी ओजस्वी वाणी से हम सभी को प्रफुल्लित किया और बिल्कुल भी नींद आलस्य का आने का कुल चांस ही नहीं दिया। इतना हंसते हंसाते इतना सुंदर क्लास कराई और आलस्य अलविलेपन से हमें दूर किया, तो सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए कि सदाई हमें आलस्य अलविलेपन को समाप्त करना है।
Okay। चिंतन का रूप दीना।